और उस मुख्य विषय का और एक प्रमुख भाग है इतना महाभारत बनने के लिए, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, तो आपके पत्नी के और कितने पति हो मुझे बताओ, ताकि ग्रंथ पूरा हो जाएगा। तो नवाब ने कहा ग्रंथ कैंसल। तो इसीलिए अगर कोई कहेगा कि हेतु भी है, यानी कि वो डिक्लेरेशन भी कर देता है कि मुझे ग्रंथ लिखना है, उसकी स्तुति करनी है, लेकिन अगर सही उदाहरण न हो तो फिर नवाब की कथा हो जाती है, नवाब की महाभारत के समान कथा होती है। इसलिए हेतु होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण होना महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे इतना सारा उदाहरण दिया और फिर से पूरा जो थीम है, जो विषय है, वो ओरिजिनल विषय के नजदीक लाना है, उसको कहा जाता है उपनय। उप मतलब नजदीक लाना। और ये सब कुछ करने के लिए, ग्रंथ रचना करने के लिए, अगर आपको निगमन, निगम कल्प तरोर, निगम यानी कि वेदांत सूत्र, अगर आप वेदांत सूत्र का आश्रय नहीं लोगे, फिर जो कोई आध्यात्मिक ग्रंथ है वो आध्यात्मिक ग्रंथ न होकर केवल वो मनोकल्पित विचार हो जाता है, तार्किक ग्रंथ हो जाता है। इसलिए हर एक ग्रंथ में, हर एक आध्यात्मिक ग्रंथ में वेदांत सूत्र होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तीसरे श्लोक में भागवत के व्यासदेव जी लिखते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये श्रीमद भागवत क्या है, ये सारे वेदांत सूत्र का सार है। इसलिए रूप गोस्वामी वेदांत सूत्र का ही प्रस्तुत करते हैं। वेदांत सूत्र में है अमृतस्य पुत्र, कि आप इस भौतिक जगत के नहीं हो, रसो वै सह, ये सारा शब्द आता है रसो वै सह, कि आप रस के बने हुए हो, अमृतस्य पुत्र, अब मृत्यु नहीं हो परंतु अमृतस्य पुत्र, उसको प्राप्त करने के लिए जाओ, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, वेदांत सूत्र का पालन करना। और जब ऐसा होता है तब वस्तु निर्देश को कहा जाता है कि वैज्ञानिक है। और इसलिए रूप गोस्वामी वस्तु निर्देश प्रस्तुत करते हैं इस प्रस्तावना में। और दूसरा है नमस्कार करना। नमस्कार किसको करना, पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करना। इसलिए जिस ग्रंथ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार नहीं किया जाता है फिर वह ग्रंथ नहीं है। अगर कोई देवी देवताओं को नमस्कार करता है फिर वह ग्रंथ पूर्ण नहीं है। ये मंगलाचरण की ऐसा ही नियम है कि आपको पहले भगवान विष्णु या कृष्ण को ही प्रणाम करना चाहिए। और रूप गोस्वामी ऐसा प्रणाम करते हैं अपने मंगलाचरण में, वो कहते अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रश्रमर रुचि रुद्ध तारका पालय कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विदुर जयति। ये रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का पहला श्लोक है। और इतना सुंदरता से उन्होंने प्रयोग किया है शब्दों को, वो अखिल रसामृत मूर्ति ही, ये तो भगवान को ही प्रणाम है ये पहला शब्द, और साथ साथ ये वस्तु निर्देश भी है। वस्तु निर्देश यानी कि कृष्ण इस ग्रंथ के विषय है, रस इस ग्रंथ का विषय है, और श्री कृष्ण सारे अखिल रस अमृत मूर्ति, सारे रसों को आस्वादन करते हैं। कौन से रस, प्रभुपाद जी लिखते हैं 5 महत्वपूर्ण रस है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांत रस। ये 5 मुख्य रस और 7 ये उप रस है। इन सारे रसों को आस्वादन करने वाले श्री कृष्ण, इनको मैं प्रणाम करता हूं, यानी कि वो वस्तु भी हो गया, ग्रंथ का उद्देश्य भी हो गया, और साथ साथ कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं प्रश्रमर रुचि रुद्ध तारका पालय कलित श्याम ललितो राधा प्रयान विदुर जयति। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि देखिए भक्ति में हमेशा ग्रेडेशन होता है और भक्तों में भी ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन निकिस्तर, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। और साथ साथ उत्तम भक्तों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध भक्त और भगवान के निकट के भक्त। और उन निकट भक्तों में भी और स्तर होता है। वो स्तर क्या है कि एक ऐसे भक्त है जो भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। और यहां रूप गोस्वामी कहते हैं कि तारका और पालई, ये दो गोपियां हैं, ये तारका और पालिका, इन दोनों को भगवान अपने प्रति आकर्षित करते, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण करने की शक्ति है और इसलिए वो भगवान की सेवा करते हैं। और दूसरे है श्याम और ललिता, कलित श्याम ललितो, इनकी भक्ति इतनी तीव्र है ललिता और श्याम का, उनके प्रति भगवान वो अपने मेन ग्रुप में उनको स्वीकार करते हैं। और राधा प्रेयन जयति, राधा प्रेयन जयति मतलब कि राधा रानी से वो आकर्षित हो जाते हैं। देखिए भक्ति यानी कि कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर उनकी सेवा करना, यानी कि कृष्ण का व्यक्तित्व इतना महान है इसलिए हम उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन भक्ति यानी कि क्या, कृष्ण भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। यहां राधा रानी के भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण उनके सेवक बन जाते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। राधा प्रेयन यानी कि वो राधा रानी से आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो तीन ग्रंथ है, भगवद गीता तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में दूसरे कोई कह रहा है, लेकिन जो बाकी के जो तीन ग्रंथ है, भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद भागवत को उपमा दी जाती है कि वो कृष्ण का व्यक्तित्व है, स्वयं वो श्री कृष्ण है। कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि विसह कलाव नष्ट दृशा में का पुराना अर्क उदुनोदिता। जिस समय सारे मुनियों ने पूछा, भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए धर्म के साथ, और ऐसी अवस्था में कलयुग में उनको रिप्लेस करने के लिए उनके बदले में कौन है, तब सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया था कि ये भागवत ग्रंथ है जो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और वैसे ही चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जब आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ भक्तों के संग में पढ़ोगे, आप स्वयं श्री चैतन्य देव का संग कर रहे हो। और वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु श्रीमती राधा रानी का व्यक्तित्व है। जब हम भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ते हैं, हम जान सकते कि राधा रानी और भक्ति रसामृत सिंधु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी इस स्तर के साथ पहले इन दो गोपियों का नाम लेते जो कृष्ण से आकर्षित है, दूसरे दो गोपी है उनकी भक्ति इतनी तीव्र है भगवान उनको अपने ग्रुप में स्वीकार करते हैं, और तीसरी जो राधा रानी है श्रीमती, उनकी सेवा इतना दिव्य है तो भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी प्रस्तावना में लिखते हैं कि कृष्ण यानी कि सबको आकर्षित करने वाले, और भक्ति यानी कि जो कृष्ण को आकर्षित करता है, इसलिए राधा रानी और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो हम यहां रोकते हैं, 9:30 हो गया बराबर ना, 9:30 को रोकना है। तो हम शाम के समय जो रूप गोस्वामी किस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं भगवान गुरु वर्ग और बाकी सब भक्तों को, और कैसे आशीर्वाद देते हैं, ये विषय है। और तीसरा विषय मंगलाचरण का, भक्ति का विश्लेषण, शुद्ध भक्ति क्या है, सामान्य भक्ति क्या है, इसका जो विश्लेषण है वो हम शाम के वर्ग में सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, ये क्या दो प्रश्न हम ले सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवते वासुदेवाय। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर बहुत सारे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, वो भ्रमित हो जाते हैं। कृष्ण बोलने पर भी स्वीकार नहीं करते, भगवद गीता स्वयं कृष्ण कह रहे अपने बारे में, फिर भी इतना सारा लोगों में अलग अलग विचार है भगवान के प्रति। देखो वो तो केवल कृष्ण कौन है इसके बारे में समस्या है, तो उसके आगे कृष्ण के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानना और भी कठिन है। एक तो कृष्ण को नहीं जान पाते हो, उसके आगे कृष्ण के कार्यों को जानना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कृष्ण के कार्यों को देखकर एक तो कृष्ण की निंदा करते हैं, या तो कृष्ण के कार्यों को बहुत साधारण बना देते। और चैतन्य चरितामृत एक इसके बारे में, कृष्ण के मन के बारे में हम देखते हैं। हमारे मन को हम समझ नहीं सकते तो भगवान के मन को क्या समझेंगे। अपना ही मन इतना चंचल है, इतना गहरा है समुद्र के समान, अनर्थों से, भूषणों से नहीं, अच्छे गुणों से नहीं, अनर्थों से इतना गहरा है, तो उसको ही समझना इतना कठिन है, फिर भगवान के मन को समझना कितना कठिन है, ये तो संभव नहीं है। तो केवल प्रेरणा द्वारा ही हो सकता है, और प्रेरणा कौन प्रदान करते हैं, स्वयं भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए श्री कबीरराज गोस्वामी रूप गोस्वामी की स्तुति करते हैं, श्री चैतन्य मनोभिष्टम। ऐसे रूप गोस्वामी है जिन्होंने महाप्रभु की जो मन कामना है वो इस पृथ्वी तल पर स्थापित कर रहे हैं, वो तो कितना महान है। भगवान के मन को जानना और उसके अनुसार यहां प्रस्तुत करना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी योग्य व्यक्ति है भक्ति के विज्ञान को हमको समझाने के लिए, और उनको स्वीकार करके हम जब प्रक्रिया में लग जाते हैं, निश्चित है हम इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां बताया जाता है, जिस समय रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे, उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने, जगन्नाथ के सामने एक भौतिक साधारण काव्य गाया करते थे। अगर आपने कभी देखा आपके गुरुजन और आपके जो काउंसिलर फिल्म गाने गा रहे थे, क्या होगा, आप तो भ्रमित हो जाएंगे, आपके सीनियर डिवोटी के पास चले जाएंगे। हमने सुना है कि हमारे जो हरे कृष्ण के बदले में हमारे काउंसिलर फिल्म के गाने गा रहे। तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु हर पल जगन्नाथ जी के सामने एक काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ है, और जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है ये साधारण स्त्री पुरुष के बीच में का जो संबंध होता है, वो जो व्यक्त करने वाला जो पद्य है उसको महाप्रभु गाया करते थे। और लोग समझ नहीं सकते थे क्या महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे, लेकिन जानते थे तो भगवान स्वयं है, इसमें कुछ तो गूढ़ रहस्य है। और जब रूप गोस्वामी आए जगन्नाथपुरी, हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे, उन्होंने भी सुन लिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु उस काव्य प्रकाश ग्रंथ से कुछ गा रहे। और उसमें क्या था कि एक स्त्री अपने जो प्रियकर है उससे फिर से मिल जाती है बहुत साल के बाद, और वह कहती है कि देखो मेरे हृदय के जो स्वामी है उनके साथ मेरा फिर से संबंध हो गया है, उनका फिर से मिलन हो गया है। वही पूर्णिमा का रात है, चंद्रमा प्रकाशित है, कदम का वन है, परंतु मेरी इच्छा क्या है कि मुझे रेवा नदी के तट पर जो वेतसी वृक्ष है उसके नीचे ही उनका संग करना मैं चाहती हूं। तो महाप्रभु इसको गाते थे, रूप गोस्वामी वो सुनते हैं और तुरंत वो एक पद्य लिखते उसके अनुसार ही, और वो अपने जो हरिदास ठाकुर की जो झोपड़ी है उसके ऊपर लगा देते उसको, और वो स्नान करने के लिए चले जाते। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिलने खास आते, हर रोज श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को मिलने आया करते थे, और महाप्रभु देखते उस पद्य को और बड़े आश्चर्यचकित हो जाते। और उसी समय रूप गोस्वामी स्नान करके अंदर आ जाते और महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते इसको किसने लिखा है। हरिदास ठाकुर कहते कि ये तो रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है। और रूप गोस्वामी को देखकर महाप्रभु एक चापा लगाते हैं प्रेम से। जब प्रेम होता है तभी भी कोई डांटते या मारते हैं, और जब गुस्सा भी हो जाता है तभी मारते, लेकिन प्रेम के कारण महाप्रभु उनको चापा लगाते और गले मिलते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहते कि देखो कि कैसा संभव कि मेरे मन के बातों को रूप गोस्वामी ने समझ लिया है, ये कैसा संभव है। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहने लगते कि महाप्रभु केवल आपने उनके प्रति आपकी कृपा दर्शाई है इसलिए जान सकते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते मैंने रूप गोस्वामी को देखा जब प्रयाग में मेरे पास वो आए थे सुनने के लिए, मैंने उनको सुनाया और उसी समय मैंने उनको पूरी मेरी जो कृपा है उसको दर्शाया, उनको प्रदान कर दिया था, इसलिए वो सारे ग्रंथों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह है प्रेरणा का स्थान, प्रेरणा देने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन इतना होने पर भी रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि मैं वराको, वराको यानी कि बहुत तुच्छ हूं, बहुत तुच्छ होने के नाते मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है लिखने के लिए। तो आचार्यगण कहते हैं कि जब ऐसा कोई महान भक्त कहता है कि मैं तुच्छ हूं, वही उसकी योग्यता है, वही उसकी महानता है। इसलिए जीव गोस्वामी और उसी शब्द को लेकर वराक, इस शब्द का दो अर्थ होते हैं, वराक यानी कि अयोग्य और वराक यानी कि योग्य, उसको बदल देते हैं। जैसे कि भगवत गीता के पहले अध्याय में जिस समय दुर्योधन जब अपनी सेना और पांडवों की सेना के बारे में वर्णन कर रहा था, किसके सामने, द्रोणाचार्य के सामने, और भीष्म विदेव भी थे, तो उसको ऐसे शब्द युद्ध प्रयोग करने थे जिससे कि दोनों व्यक्ति अलग अलग अर्थ लेंगे। उन्होंने कहा पर्याप्तम भीमाभिरक्षितम, अपर्याप्तम भीष्माभिरक्षितम। तो इसके दो अर्थ होते हैं। वो कहना चाहते थे द्रोणाचार्य को कि भीष्मदेव है ये हमारे सेनानी है, इसके कारण हमारा जो शक्ति है वो अपर्याप्त है। तो भीष्मदेव को कैसा लगा अपर्याप्त है कि अनलिमिटेड हमारी सेना है, लेकिन अपर्याप्त मैंने कि और एक अर्थ होता है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं, पर्याप्त अपर्याप्त मैंने कि सफिशिएंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नहीं है, क्योंकि भीष्मदेव को चोट नहीं देना चाहते थे, उनको लगा कि अपर्याप्त है कि कोई सीमा नहीं है। लेकिन अपर्याप्तम का और एक अर्थ होता है कि जो प्रचुर मात्रा में नहीं है। और भीम से रक्षित जो पांडवों की सेना है पर्याप्तम, पर्याप्त यानी कि सीमित और पर्याप्त यानी कि प्रचुर मात्रा में। देखो ऐसे शब्दों का दुर्योधन भी उपयोग कर रहा था, लेकिन उसकी भावना क्या थी, राजकारणी होने के नाते एक ही शब्द से वो अलग अलग अर्थ देना चाहता था। तो यहां तो रूप गोस्वामी ऐसा नहीं करना चाहते, वो साफ साफ बता रहे कि मैं तो इतना तुच्छ हूं, वराक रूप, छोटा सा रूप, लेकिन इसका अर्थ भी होता है कि रूप गोस्वामी योग्य है इस ग्रंथ की रचना करने के लिए। जब भगवान के सामने ऐसे भक्त प्रस्तुत करते, जैसे कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो कुरेश, कुरेश रामानुजाचार्य के बहुत बड़े शिष्य थे और उनके पुत्र थे पराशर भट्ट, वो हमेशा जाया करते थे रंगनाथ स्वामी के पास और आचार्यों की जो प्रार्थना है उसको प्रस्तुत करते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम स्वयं कभी प्रार्थनाओं को अर्पण नहीं कर सकते, प्रार्थनाओं को अर्पण करना केवल जो भाव भक्त है वही अर्पण कर सकता, हमें क्या करना है जो आचार्यगण ने जो लिखा है उसी प्रार्थनाओं को अर्पण करना चाहिए। तो पराशर भट्ट उनके जो आचार्य है जो यमुनाचार्य जी ने लिखा हुआ वो प्रार्थना भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं तो क्या हूं, अमर्यादा क्षुद्र छलमती असुया प्रसभु पापिष्ट, ऐसे अनेक दुर्गुणों का वर्णन कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि भगवान इस दुर्गुण का सागर पार करना मेरे लिए बहुत कठिन है, ये कैसे होगा। तो पराशर वड इतने महान भक्त होने के कारण स्वाभाविक था कि कई लोग उनके प्रति द्वेष किया करते थे। तो एक ऐसा द्वेषी पंडित वो आ गया रंगनाथ के मंदिर में। उन्होंने देखा कि पराशर भक्त भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे कि मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं। तो पीछे खड़ा कर वो कह रहा था सत्यम सत्यम, वो कह रहा था कि हे भगवान ये जो भी कह रहा है ये पापी है सत्यम, इसके अंदर बहुत दुर्गुण है सत्यम, इसके अंदर असूया है सत्यम। वो हर बार सत्यम सत्यम कह रहा था। तो कहा जाता है कि जब अगर कोई हमें, हम अपने आप को कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों के सामने, मैं बहुत तुच्छ हूं, वैसे कहने से क्या होगा, लोग बड़ा इंप्रेशन गिरेगा, अरे अपने आप को तुच्छ मानता है। लेकिन अगर कोई ऑडियंस में कहा सही में तुम तुच्छ हो तो फिर तो हमें गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है क्योंकि हम बद्ध जीव है। लेकिन जो महान भक्त होते ऐसा नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे थे, ब्राह्मण यानी कि प्रथम, क्षत्रिय दुयम सेकंड, और वैश्य थर्ड, और शूद्र चतुर्थ वर्ण। और वो कह रहे थे कि भौतिक समाज ने क्या किया, केवल 10th क्लास पीपल को क्रिएट किया हुआ है। तो विद्यार्थी खड़ा होकर उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को कि व्हाट इज योर क्लास, आपका कौन सा क्लास है। बहुत वैसे द्वेषी था प्रभुपाद जी, कहने लगे आई फॉल इन टू द 10th कैटेगरी, मैं 10th कैटेगरी का हूं। तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो जब ए पराशर भट्ट सुन रहे थे इस पंडित के वचनों को सत्यम सत्यम, उन्होंने पीछे देखा नहीं, वो भगवान को कहने लगे देखो कि हे रंगनाथ आप मेरे शब्दों को मानते नहीं हो, इसलिए मैंने क्या साक्षी लेकर आया है, विटनेस लेकर आया हूं, और ये विटनेस दे रहा है कि जो जो कुछ भी मैं कहता हूं सत्यम सत्यम, इसलिए अब तो स्वीकार करो मेरे वचनों को और मुझे भव सागर से पार कर दो। तो यहां रूप गोस्वामी ऐसे ही कह रहे, कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, जितने भी महान आचार्य है कभी अपने आप को योग्य नहीं समझते, इसलिए वे योग्य बन जाते हैं। तो ऐसे शब्द भगवान उनके मुख से निकाल देते हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए, ग्रंथकार के दृष्टि से देखा जाए, उसका अर्थ क्या है, अयोग्य। लेकिन दूसरों के दृष्टि से देखा जाए वो क्या हो जाता है, योग्य। तो रूप गोस्वामी ऐसी प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करते क्योंकि वो उनके इष्ट देव है। और आगे कहा जाता है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, जैसे कि हम सब गौड़िया वैष्णवगण रूपानुगा है, सारे रूप गोस्वामी के अनुयायी है, और रूप गोस्वामी अपने आप को सनातन गोस्वामी के शिष्य मानते हैं। और वो सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते कि ये जो ग्रंथ है ये केवल आपकी प्रसन्नता के लिए मैं लिख रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार प्रद्युम्न प्रभु को कह रहे थे कि देखो जो हमारे गोस्वामी ग्रंथ है, जब वो ग्रंथ लिखते थे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूं बाद में आगे जाकर किसी प्रिंटिंग प्रेस में इसको दिया जाएगा, फिर ये पब्लिश होगा, फिर लोग पढ़ेंगे, फिर मेरा नाम हो जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे थे उन्होंने कभी ऐसा ग्रंथ इसीलिए नहीं लिखा कि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, वो अपने मित्रों के लिए लिखते थे, अपने गुरुजनों के लिए लिखते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए लिखते थे। उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि हम पूर्ण जगत में प्रसिद्ध होना है। कभी कभी हमारी सेवा अगर चार लोगों को भी समझ में नहीं आती तो हमको बड़ा दुख लगता है। तो यहां रूप गोस्वामी केवल एक अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो कहते कि है सनातन गोस्वामी को प्रमोद या इतना आनंद प्रदान करे। और सनातन शब्द का यह भी होता है कि भगवान विष्णु, दोनों को भी वो प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। और बाद में रूप गोस्वामी, ये तो सनातन गोस्वामी उनके गुरु वर्ग हो गए, अब सब भक्तों को प्रणाम करते हैं जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए। वो कहते कि जो भगवान के जो महान भक्त है वो इस समुद्र में, हमने देखा कि भक्ति रसामृत सिंधु है, और इस सिंधु में जो गोता लगा रहे उनको इतना आनंद प्रदान करे ये ग्रंथ। और वो कहने लगते हैं लेकिन जो भक्तगण जो गोता लगाकर आनंद प्रदान कर रहे वो किस प्रकार से, वो मगर के समान है, संस्कृत में मकर कहा जाता है, वो मगर के समान है। भक्तों को मगर की उपमा क्यों देते हैं, इसके लिए जीव गोस्वामी कहते तीन कारण दिया जाता है। एक तो जो शार्क है वो हम नदियों में नहीं देखेंगे उनको, शार्क या मगर कभी नदी में वास नहीं करता, केवल वो सिंधु में ही वास करता है। क्यों, जो बहुत बड़ा प्राणी है जलचर, तो वो केवल वो पानी में समुद्र में ही रहेगा। वैसे भगवान के जो भक्त है वो साधारण पानी का जो शरीर है उसको स्वीकार नहीं करते। हम देखते हैं भौतिक जगत में लोग ऐसे स्थान में वास करने की इच्छा रखते हैं, इधर ही रहना चाहते हैं, वो भगवान के धाम में जाना नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद जी एक बार किसी ग्रंथ वितरण कर रहे थे, अन्य लोगों पर सुगम यात्रा, तो एक व्यक्ति ने कहा वो लिया हो किताब, और प्रभुपाद जी ने उसको कहा ये बहुत आसान है आप अन्य लोगों के पास जा सकते हो। फिर उसने प्रश्न किया अगर वहां जाने पर यहाँ वापस आएंगे ना, प्रभुपाद जी कहते यहाँ क्यों वापस आना, तो मुझे हम एक ग्रंथ नहीं चाहिए। तो वैसे ही जो भक्तगण है वो किसी भी पानी को स्वीकार नहीं करेंगे, चातक पक्षी के समान, केवल जो मेघ का पानी, रोहिणी नक्षत्र के समय जो पानी आता है उसी पानी को ग्रहण करते हैं। वैसे मगर केवल समुद्र में वास करेगा और नदी में नहीं आएगा। और दूसरा है कि जो भक्तगण है इस भौतिक सुख में कभी भाग नहीं लेते, नदियों को भौतिक सुख के समान या नदियों को जो ब्रह्म सुख, जो ब्रह्मवाद या मायावाद का जो सुख है उससे तुलना की है। जो मायावाद दार्शनिक है, जो ब्रह्मवादी दार्शनिक है, हमेशा चाहते कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। जैसे कि नदियां, जैसे गंगा, आपने कई लोग हिमालय जाकर आया होगा, गंगा क्या कर रही है, इतनी तेजी से वो गंगा सागर की ओर जाने की इच्छा रखती है, वहां लीन होने की इच्छा रखते। इसलिए सारे नदियों को मुक्ति के समान मुक्ति की प्रक्रिया बताई जाती है, और समुद्र क्या है, वो मुक्ति है, तो सारे नदियां मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते है। वैसे ही जो ब्रह्मवादी और मायावादी है वो लीन होने की इच्छा रखते है, लेकिन मगर कभी लीन होने की इच्छा नहीं रखता, वो समुद्र में अपने अस्तित्व को रखता है और समुद्र में बहुत भोग लेने की इच्छा करता है, वो भक्त वैसे ही है। और तीसरा, जो समुद्र में हम देखते हैं मछली मार जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, और जब ऊपर तैरने वाले जो मछली है वो आराम से पकड़े जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो दिखाना चाहते देखो हम कितने सुखी है। इस भौतिक जगत में ऐसा ही है, जो भोग दिखाना चाहते हैं उनको भौतिक प्रकृति तुरंत पकड़ लेती है, लेकिन जो मगर है वो क्या कर रहा है, वो इतने गहरे पानी में रहते हैं अगर मछली मार जाल भी फेंक दे तो कभी पकड़े नहीं जाते। आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा कि मछली मार के जाल में मगर आ गया, एक तो जाल उसका टूट जाएगा, वो पकड़ेगा क्या, तो इतना गहरे पानी में रहते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो जाल है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के समान है। तो भक्तगण कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जाल में फंसते नहीं है, क्यों, वो कृष्ण भक्ति में समुद्र में इतने लीन तल्लीन हो गए वो कभी पकड़े नहीं जाते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को जो मगर के समान है उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु खूब आनंद प्रदान। सनातन रूप गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद देने के लिए अगर पहले कह रहे तो मैं तो अयोग्य हूं, वराक, मैं तो तुच्छ हूं, और तुच्छ व्यक्ति आशीर्वाद कैसे दे सकता है। अगर कोई भक्त कहेगा कि मैं सबको आशीर्वाद देना चाहता हूं, अब जान जाना चाहिए कि इसका जल्दी ही पतन होने वाला है, क्योंकि आशीर्वाद लेने के लिए हमको आतुर होना चाहिए। देना तो काम केवल गुरु और कृष्ण का है। तो कैसे रूप गोस्वामी आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, जिस समय रूप गोस्वामी ललित माधव और विदग्ध माधव ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उस समय वे लिखते उस ग्रंथ में, जैसे कि पुलिंद लोग होते हैं, पुलिंद यानी कि एबोरिजिन आदिवासी लोग होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म के बाहर है, अगर ऐसे ही आदिवासी लोग अग्नि जलाते हैं, कुछ समिधा लेकर अग्नि लगाते हैं, तो उस अग्नि से क्या होगा, पुलिंद ने लगाया हो या ब्राह्मण ने लगाया हो, अग्नि तो अग्नि ही है। तो उस अग्नि में जब सोना गिर जाता है, वो जो सोना है अग्नि के कारण इतना साफ बन जाता है, 24 कैरेट गोल्ड अत्यंत शुद्ध बन जाता है। वैसे रूप गोस्वामी कहते हैं मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो नीच हूं, लेकिन फिर भी जो भक्ति रसामृत सिंधु है ये अग्नि है, भक्ति की अग्नि है, इसमें कृष्ण की स्तुति है, और कृष्ण की स्तुति होने के नाते क्या होगा, जो सोने जैसे भक्त है, गोल्डन लाइक डिवोटीज, वो इसका अध्ययन करते ही जो भी कलमश उस सोने को लगा हुआ है वो सब साफ हो जाएगा, वो 24 कैरेट गोल्ड बन जाएंगे। इसलिए वो कहते कि ऐसे भक्तों को मैं इस ग्रंथ के द्वारा आशीर्वाद देना चाहता हूं, या प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाए, और साथ साथ जो मायावादी दार्शनिक है और जो ब्रह्मवादी दार्शनिक है, जो तार्किक लोग है, उनका प्रभाव न आने दे, क्योंकि जब तार्किक लोग आ जाते हैं, हम देखते हैं जब मायावादी और तार्किक लोग अगर हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो हम गौर निदा को प्रणाम करना बंद करके स्वयं को भगवान बन जाएंगे, क्योंकि मायावादी लोग इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं अपने, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली नहीं, इसलिए उनके प्रभाव में हम फंस जाते हैं। जैसे कि एक भक्त कह रहे थे, अफ्रीकन डिवोटी, हमने कल देखा होगा, उनके साथ में और एक भक्त रहा करते थे, वो कृष्ण भक्ति कर रहे थे, बाद में ऐसे किसी संस्था में चले गए, वो अपने आप को भगवान मानते, और ऐसे जो अपने आप को भगवान मानने वालों की वो पूजा करते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते कि ऐसे मायावादी और ब्रह्मवादी का प्रभाव भक्तों के ऊपर आना नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं। और ऐसे तार्किक मीमांसक, मीमांसक यानी कि दो प्रकार के मीमांसक है, एक पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस। पूर्व मीमांस यानी कि जो कर्मकांड है, जहां देवी देवताओं की पूजा करना, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए पूजा करना, गंधर्व लोक जाने के लिए प्राप्ति करना, कभी कभी भक्तगण भी इसमें फंस जाते हैं। हम जानते थे एक ब्रह्मचारी थे, वो अच्छा गाया करते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि मुझे कम से कम एक बार तो गंधर्व लोक में जाना ही है, वहां गंधर्व में जाकर फिर अप्सराओं के साथ में संग करना है। ऑनेस्ट तो है बहुत, जैसे कि कई भक्तगण अमेरिका जाने की इच्छा रखते हैं। जैसे एक भक्त कह रहे थे, जो तुलसी की प्रार्थना है, क्या कहते हो तुलसी प्रार्थना, विलास कुंज दियोवास, कभी कभी भक्त कहते हैं अमेरिका दियोवास। तो इस प्रकार से जब कर्म यानी कि पूर्व मीमांसा, कर्मकांड की स्वर्ग में जाना है, गंधर्व लोक में जाना है, मुझे तप लोक में जाना है, ये सब कुछ है कर्मकांड है। तो इसी कारण से देवी देवताओं की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, एक कर्म मीमांसा, और जब उससे जब सुख नहीं मिलता फिर उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस, फिर उत्तर मीमांस को स्वीकार करना। उत्तर मीमांस में क्या है कि ज्ञान कांड, नेति 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 नेति, इसको छोड़ो उसको छोड़ो इसको छोड़ो उसको छोड़ो और अंत में भगवान को ही छोड़ दो। जैसे एक बार जयवीर महाराज बता रहे थे कि जो मायावादी होते हैं उनका वैराग्य अपूरा है, नहीं नहीं अपूरा नहीं, बहुत ही पूरा है, उनका वैराग्य इतना पूरा है कि वो कृष्ण को भी त्याग देते हैं। तो ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए। तो कर्म मीमांस में क्या है, पूर्व मीमांस में कर्मकांड भोग और उत्तर मीमांस में त्याग। तो दोनों के बीच में ये तर्क के कारण अपना जो सेवा है भगवान के प्रति, जो प्रेम है, उस सेवा भावना नाश हो जाती है। इसलिए भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग, ये भौतिक जगत का ये साइकोलॉजी है कि भोग करो फिर बाद में त्याग करो, भोग करो त्याग करो। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से किसी ने प्रश्न किया था, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद ये क्या है भोग और त्याग, और हम ये भी देखते कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भी ऐसे ही थे, ऐसा दिखाई देता है। आज सनातन गोस्वामी का तिरुभा महोत्सव है, वो कहते कि जैसे रामानंद राय थे वो तो भोगी लगते थे, गवर्नर थे मद्रास के, उनका बहुत बड़ा परिचर्य था, लोग उनकी स्तुति करते थे, उनका बहुत बड़ा पैलेस था, तो फिर वो कैसे भक्त है। और सनातन गोस्वामी ने सब कुछ त्याग कर दिया, वो तो त्यागी है, एक भोगी और त्यागी, एक ऐसा है। ऐसे उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रश्न किया था और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे ऐसा नहीं है, और उन्होंने एक उदाहरण दिया। जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री होती है उसको देखकर हम समझ सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे कि देखकर समझ सकते कि वो उसके पति घर में है या घर में नहीं है। जब पति घर में होते हैं वो क्या करती है, अपने आप को श्रृंगार करती है, किसके लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, नहीं कि वो मिस यूनिवर्स बनने के लिए, केवल पति को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को श्रृंगार करती है। और जब पति घर में नहीं है फिर वो क्या करती है, उस सारे आभूषण को निकाल देती है, बहुत साधारण कपड़ों को पहनती है। तो भोग है और त्याग है, देखने वालों को क्या लगेगा, वो भोग कर रही है, इतना सब श्रृंगार कर रही है, और कभी वो क्या करेगी, वो सारे आभूषण को निकालकर बहुत सादा रहेगी, तभी लगेगा लोगों को अभी बहुत भोग गया, अभी वो त्याग कर रही है। सरस्वती ठाकुर कहने लगे ऐसा नहीं है, भोग या त्याग दोनों अपने पति के लिए है, एक तो भोग अपने पति को संतुष्ट करने के लिए और त्याग उनके विरह में वो साधारण रहती है। और जब भोग और त्याग केंद्र बिंदु अपने पति के लिए होता है फिर वो भोग त्याग नहीं है बल्कि वो सेवा है। वैसे ही सनातन गोस्वामी का त्याग या रामानंद राय का भोग दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा के कारण होने के नाते वो क्या है, वो भोग त्याग न होकर वो केवल सेवा है। ये मीमांसक नहीं जानते हैं, वो तो भोग त्याग भोग और त्याग कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी यहां कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मीमांसक है मेरे ग्रंथ के बीच में नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कि हर एक ग्रंथ में जो मायावादी गण अपना कुछ लिखना चाहते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे